प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग एक, लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्,
नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सर्वसाहूणम्, सुर असुर नरपति वंदने प्रविनष्ट गाति कर्मने प्रणमन करो धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थं करने सौ सिद्ध शुद्ध तीर्थ ने मुनि ज्ञान ग्रहचारित्र तपवी या चरण संयुक्त ने ते सर्व ने साथे तथा प्रत्येक ने प्रत्येक ने बंधुवली मनुज क्षेत्र वर्तता अरहंत ने अरहंत ने सा सिद्धने या नमस्करण करिए रीते गणधरन अध्यापकोने सर्व साहु समूहने असुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पानिने प्राप्ति करूं सामनी ये नाथी शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये पहली पुस्तक है, प्रवचन सुधा भाग एक, और उसके पृष्ठ संख्या 88 पर हम आ गए, 88। कल हमने 13 नंबर की गाथा पढ़ी थी और उसका अन्वयार्थ देखा था। कल हमने वो सुख जो है ना, केवली भगवंतों का सुख, मनीषा बेन, हमने 6 पॉइंट्स देखे थे, याद है? हाँ, पहला कौन सा था? अतिशय, अतिशय आत्मोत्पन्न, अतीन्द्रिय, फिर अनुपम, अनंत, अविच्छिन्न, ये 6 पॉइंट्स हमने देखे थे कल। अब उसकी टीका से हम पढ़ेंगे। टीका, अनादि संसार थी, क्योंकि जीव अनादि से है और संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो अनादि संसार थी। जे आह्लाद, आह्लाद यानी सुख, अतीन्द्रिय निराकुलता कहो, अतीन्द्रिय सुख कहो, पूर्वे कदी अनुभवायो नथी, एवा अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप हुआ थी अतिशय। इसको अतिशय कहा, क्यों कहा? अनादि संसार से ऐसा कभी अनुभव किया नहीं था, इसलिए अतिशय। आत्मा ने ज आश्रय करीने एटले स्वाश्रित प्रवर्ततु हुआ थी आत्मोत्पन्न। अभी तो क्या मानता था कि इंद्रियों के विषयों से मुझे सुख मिल रहा है, वो तो सही बात नहीं थी। ये कैसा है तो आश्रित, आत्मा के आश्रय से पूर्ण स्वाधीन है, इसे आत्मोत्पन्न कहा। तीसरा पॉइंट, पराश्रय थी निरपेक्ष हुआ थी, पहला तो स्वाश्रित कह दिया, अब कहते पराश्रय से निरपेक्ष होने से स्पर्श रस गंध वर्ण अने शब्द ना तथा संकल्प विकल्पना आश्रयणी अपेक्षा विनान हुआ थी, क्योंकि ये जो विषयों का जो सुख है वो देखे हुए में या सुने हुए में या अनुभूत में, बाकी संकल्प विकल्प के यानी मन के द्वारा भी भोगे हुए देखे हुए उसकी बात होती है ना, तो कहते उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो विषयातीत है, यानी विषयों के द्वारा उत्पन्न नहीं है, विषयातीत है, अत्यंत विलक्षण हुआ थी। विषयातीत को ही अतीन्द्रिय कहा था, अत्यंत विलक्षण हुआ थी अर्थात बीजा सुख होती तद्दन भिन्न लक्षण वालो हुआ थी अनुपम। यहाँ विलक्षण यानी तो अद्भुत ऐसा जुदा ही लक्षण है। समस्त आगामी काल में कदी नाश नहीं पामतो हुआ थी अनंत, अने अंतर पड़ा विना प्रवर्ततु हुआ थी अविच्छिन्न, अने हर समय चलेगा, अविच्छिन्न अविच्छिन्न डबल न चाहिए। यानी उसमें अंतर नहीं, हर समय चल रहा है, हर समय हर समय हर समय हर समय नित्य सादी अनंत काल तक रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा उसमें। अविच्छिन्न विषयों का सुख कैसा होता है, अरे उसमें अभी साता कभी असाता हो जाए तो उसको तो टूट जाती है उसकी धारा, वो विच्छिन्न होता है, वो आएगी बात बाद में। आउ शुद्धोपयोग थी निष्पन्न थेला आत्मा उनु सुख छे माटे ते सुख सर्वथा प्रार्थनीय छे, प्रार्थनीय ने इच्छने योग्य अर्थात सर्व प्रकारे इच्छवा योग्य छे। अब ये तो अमृतचंद्राचार्य की टीका हुई, अभी जयसेन आचार्य की संस्कृत में से पढ़ना है, पेज नंबर 88 बीच में लिखा है ना, वो दो लाइन के बीच में। अथ शुभ अशुभ उपयोग द्वयम् निश्चय नयेन हेयम् ज्ञात्वा, क्या कहते हैं, पहले वो बता चुके थे शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग है ही है, शुभ उपयोग को हेय कहा और अशुभ उपयोग अत्यंत हेय कहा था, याद है ना आपको, तो हेय जानकर शुद्धोपयोग अधिकारम प्रारभमाणः, यानी शुद्धोपयोग का अधिकार यहाँ शुरू करते हैं, शुद्धात्म भावना भावनाम आत्मसात कुर्वाणः सन् जीवस्य प्रोत्साहनार्थम शुद्धोपयोग फलम प्रकाशयति, यानी शुद्धात्म भावना ने शुद्धात्मा में एकाग्र करना है, वो आत्मसात करके जीव के या करने वाले जीव के प्रोत्साहन के लिए शुद्धोपयोग का फल बताते हैं। अथवा या दूसरे प्रकार से द्वितीय पातनिका दूसरे प्रकार से उसका कथन कर रहे हैं, यद्यपि शुद्धोपयोग फलम अग्रे ज्ञानम सुखम च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथापि अत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति, क्या कहना चाहते हैं, ये दूसरी पद्धति से उसके पातनिका कंटिन्यूएशन में जो बता रहे हैं कि आगे जाने जाकर शुद्धोपयोग का फल ज्ञान और सुख उसका संक्षेप से और विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, फिर भी यहाँ भी पीठिका में सूचना कर रहे हैं। अथवा तृतीय पातनिका, ये तो उससे तीसरा अर्थ बता रहे, पूर्वम शुद्धोपयोग फलम निर्वाणम भणितम इदानीम पुनः निर्वाणस्य फलम अनंत सुखम कथयति इति पातनिका अत्र अयस्य अर्थम मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति, यानी सूत्र क्यों कहा उसके तीन अलग अलग अर्थ किए उन्होंने। तीसरा अर्थ क्या बताया कि पहले शुद्धोपयोग का फल निर्वाण बताया था, अब यहाँ पर फिर दोबारा निर्वाण का फल अनंत सुख बता रहे, ये तीसरी पातनिका, ऐसे पातनिका यहाँ अर्थ मन में धारण करके यह सूत्र बता रहे, ये सूत्र का प्रतिपादन कर रहे हैं। पातनिका यानी वो तो इंट्रोडक्टरी ऐसा बताते हैं ना, पातनिका में क्या विषय आने वाला है, क्या हो चुका है, इस तरह से उसको क्या
रेफरेंस बताते
हैं, हाँ क्या हुआ है क्या आने वाला है, इसको पातनिका कहा है। ये जैसे नाचार्य की विशेषता है, यहाँ पर भी समय सार में भी हर गाथा में हर अधिकार के शुरुआत में भी वो पातनिका बताते हैं, उसको समुदाय पातनिका भी कहते हैं। देखो अभी वो गाथा के शब्द लेकर अर्थ बता रहे हैं। अयम अतिशय बताया था ना, असंसारात, असंसारात का अर्थ क्या है? आयनित लेकर, अनादि संसार से लेकर असंसारात देवेंद्र आदि सुखेभ्यो अपि अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद रूपत्वात अतिशय स्वरूपम। अतिशय क्यों कहा वहां, उन्होंने भी बताया अनादि संसार थे असंसारात, हाँ अनादि संसार से लेकर देवेंद्र आदि का सुख मिलने पर भी वहां पर भी ऐसा नहीं था, उससे भी अपूर्व ऐसा अद्भुत परम आह्लाद रूप होने से इस सुख को अतिशय कहा। आद समुत्थम, आदे ने आत्मा से उत्पन्न रागादि विकल्प रहित स्वशुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्नत्वात् आत्म समुत्थम, यानी जो स्वशुद्धात्मा कैसा है तो रागादि विकल्प से रहित है, तो रागादि विकल्प से रहित ऐसे अपने शुद्धात्मा के स्वशुद्धात्मा के संवित्ति यानी उसी को जानने से उत्पन्न समुत्पन्न अच्छी तरह से उत्पन्न होने से इसको आत्म समुत्थ कहा, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। विषयातीदम, विषयातीत है ना, निर्विषय परमात्म तत्व प्रतिपक्ष भूत पंचेन्द्रिय विषय अतीतत्वात् विषयातीतम। अभी विषय को बताने के लिए निर्विषय ऐसा परमात्म तत्व है और निर्विषय से परमात्म तत्व का प्रतिपक्ष भूत कौन से, पंचेन्द्रिय के विषय और उससे अति तत्व यानी उससे रहित होने से उससे पार होने से विषयातीत है। अणोवमम, अनुपम कहा था ना इसको, निरुपम परमानंद एक लक्षणत्वेन उपमा रहितत्वात् अनुपमम। निरुपम यानी जिसमें उपमा नहीं दे सकते, ऐसे इसे परमानंद एक लक्षण होने से इसको उपमा रहित होने से अनुपम कहा। अनंतम, अनंत आगामी काले विनाश अभावात प्रमितत्वात् अप्रमितत्वात् अनंतम। अनंत के दो अर्थ किए यहाँ पर, कि आने वाले अनंत काल तक इसका विनाश का अभाव है यानी अभी कभी नष्ट नहीं होने वाला है इसलिए अनंत कहा, और दूसरा अप्रमितत्वात् अनंत यानी अमर्यादित होने से अनंत है। प्रमित है ने वो तो मापा हुआ इसको कहते अमर्यादित है, मर्यादा नहीं उसके, एक भाव की अपेक्षा दोनों अनंत लिए है ना। अवच्छिन्नम च असातोदय अभावात निरंतरत्वात अविच्छिन्नम च। अभी जो संसारी अवस्था में क्या है, साता के उदय में किसी का लक्ष्य करके सुख रूप मानता था और असाता का उदय हो जाए, वही अभी मुंह में लड्डू अच्छा लग रहा था, इसमें टेलीफोन आया किसी के कोई समाचार सुना तो दुखी हुआ, तो कहाँ गया वो लड्डू का सुख, समझ में आते हैं बात। तो ये कैसे है, यहाँ ना साता है ना असाता है, सिद्धों का बता रहे ना, तो असाधय के असाता का उदय का अभाव होने से और निरंतर होने से ये सुख कैसा है, निरंतर है, इसलिए वो अविच्छिन्न कहा। अविच्छिन्न है, टूटता नहीं, बिना टूटते निरंतर उसकी धारा चलती है। सुहम, ये सुख की बात है ना, एवं उक्त विशेष विशेषण विशिष्टम यानी ऊपर के विशेषणों से वैशिष्ट पूर्ण ऐसा ये सुख है। केशाम, किसके होता है, शुद्धो गप्प सिद्धानम वीतराग परम सामायिक शब्द वाच्य शुद्धोपयोगेन। देखो वीतराग परम सामायिक शब्द से जो बताया जाता है ऐसे शुद्धोपयोग से प्रसिद्धा यानी उत्पन्न, ऐसे शुद्धोपयोग से जो उत्पन्न हुए हैं कौन, ये अर्हत सिद्धा हा तेषामिति, जो ये अर्हंत और सिद्ध है जो शुद्धोपयोग से उत्पन्न हुए हैं उनके ऐसा ये सुख पाया जाता है। अत्र इदमेव सुखम उपादेयत्वेन निरंतरम भावनीयम इति भावार्था। और यहाँ पर यही सुख उपादेय होने से वो निरंतर उसकी भावना करने लायक है, ऐसा इसका भावार्थ है। अब हमने दोनों ही टीकाएं पढ़ी है, अब गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे। पेज नंबर है 89, प्रवचन नंबर 8। प्रवचन सार 12वीं गाथा पूरी थई, हवे 13वीं लईए। गाथानी ऊपर बे लीटी छे ने, आ रीते आ भगवान कुनकुंदाचार्य देव समस्त शुभा शुभोपयोग वृत्ति ने शुभ उपयोग रूप अने अशुभ रूप परिणति परिमति ने परिणति ने पहले आया था ये वृत्ति है ना, परिणति परिणति ने हिंसा झूठू चोरू विषय भोग वासना काम क्रोध ना परिणाम ये अशुभ छे, ये तो अत्यंत है ये छे। है एटले के तिरस्कार करवा लायक छे, छोड़ने लायक छे। अर्थात अशुभ परिणाम तर छोड़वू हे यगणू दूर करवू छोड़ी देवू, अने शुभ परिणाम छे ते पण है ये छे। केम के राग छे दुखरूप छे, व्रत दयाशील संयम ने तपनो जे विकल्प राग छे ए शुभ उपयोग छे अने ते हेय छे। धर्मी ने आदरणीय नथी, माटे जेने धर्म करवो छे एटले धर्म करवो होय तेने पहला शुभ ने अशुभ उपयोग हेय करीने, हेय करके अर्थात उसका तो मान पहले में मान्यता में लेकर निर्णय करके फिर उसको उसका लक्ष्य छोड़ के शुद्धात्मा में स्थिर होगा, इसलिए कहते हैं ये करी ने। ज्ञायक स्वभावनी त्रिकाली ज्ञायक स्वभावनी शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय आनंदनी सत्तानु जे हय्याती तत्व छे तेनी पहला दृष्टि ने अनुभव करवा, ये समय दर्शन की बात है। यानी शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर, छोड़ना का अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य छोड़ा पहला, मान्यता में लेके छोड़ने लायक है परंतु स्वभाव में तो वो है ही नहीं है, अभी स्वभाव का लक्ष्य किया तो उसको छोड़ा ऐसा कहेंगे हम। तो उसके पहले उसकी दृष्टि है और अनुभव होगा। शुभ छोड़ी ने अशुभ में जाऊं एम नहीं, पन शुभनी ने अशुभ ने रुचि छोड़ी, बात है ना यहाँ पर। अने रुचि छोड़ी ने त्रिकाली आनंद स्वरूप भगवान आत्मा उसकी रुचि करना है, उसकी दृष्टि करना है, जेमा ते शुभाशुभ राग छे नहीं, यानी वो स्वभाव में कभी वो थे ही नहीं, पर्याय में थे, इसलिए वो उसका लक्ष्य छोड़ दिया, उसकी रुचि छोड़ दी। और स्वभाव तो कायम राग रहित ही था या है, तो ऐसे आत्मा की दृष्टि, उसी को आत्मा कहा, उसकी दृष्टि प्रतीति अने ज्ञान करवा अने पची शुभाशुभ उपयोग तो रहेशे, पण पची ते शुभाशुभ उपयोग ने पण छोड़ीने शुद्धोपयोग में आवो, बारंबार वो शुद्धोपयोग बढ़ाता चला जाएगा। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ने एटले के वितराग स्वरूप नु परिणाम ए शुद्धोपयोग छे। क्या कहा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप तो मैं स्वयं हूं और मेरा परिणमन मेरे जैसा होगा, तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप का जो परिणाम है उसी को शुद्धोपयोग कहा। ते शुद्धोपयोग ने प्रशंसा करवी, यानी उसके आदर नियमान प्रशंसा करनी, यानी उसके गीत गाने ऐसी बात नहीं है, ख्याल में, केम के ते शुद्धोपयोग नु फल मुक्ति छे, जारे शुभाशुभ परिणाम नु फल बंधन छे। शुभ राग भी हो तो भी उसका फल क्या है, बंधन है। शुभ परिणाम नु फल स्वर्गादि छे, आ शेठियाओ ने पैसा धूल मळे बधा शुभ ना फल छे। अने अशुभना फल को मनुष्य तीरेंच ने नरक में जवू ए छे। एथी देखो स्वामी जी ने एक बार बताया था, ये तो हमें क्या लगता है, पैसा मिलता है, पुण्य का उदय पुण्य का उदय पुण्य का उदय, पर पुण्य के उदय में ये परिग्रह बढ़ रहा है, ये इटसेल्फ पाप है। यानी पुण्य के उदय में पाप कमा रहा है ना। ख्याल में आते ना क्या कहना चाहते है? नहीं समझ। अरे ममता तो अन्य, अरे समय तो चक्रवर्ती समय दृष्टि है, समय दृष्टि है। वो यहाँ जो है ना, क्योंकि शुभ के फल में तो वैभव मिलता, वो आने वाली गाथा। वैभव के कारण वो मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है और मानता है कि देखो मैंने कमाया, मैंने इतना खड़ा कर दिया। आपका प्रश्न ये है, एक का पुण्य का उदय तो सभी भोगेंगे, तो सबका अपना अपना पुण्य कहाँ गया? देखो देखो, हाँ देखो देखो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है एक कमाता है और बाकी भोगते हैं ना, वो भी कमाता नहीं है, वो भी अपने पुण्य का फल, और ये घर में बैठे उसको वैसी अनुकूलता है, उसका अपना पुण्य का फल, ऐसा इकट्ठा होता है ना। कभी कभी पैसा बहुत है और फिर कोई रोग आया तो उसको क्या कहेंगे? अब पाप का फल है ना। पर अकेले उसके पाप का फल नहीं है, किसी एक बीमार है तो कुटुंबी बाकी भी दुखी हो रहे हैं, उसका लक्ष्य करके उनके भी पाप का फल चल रहा है। ये पुण्य पाप के फल तो चलते रहे ना, ये तो अल्टरनेटली वही तो चल रहा है। अनादि से किया क्या है इस जीव ने, पुण्य पाप करता रहा, उसके फल भोगता रहा, और परंतु केवल भोगता नहीं रहा, तो उसमें वो जब पुण्य का फल आता है तो उसमें रचा पचा रहता है, और ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया, इस तरह से उसमें अभिमान करता है, मद करता है।
आपका कहना है कि कमाता एक है, उसको पैसा मिलता है, वो तो पुण्य का फल है, लेकिन घर में अन्य लोग जो है सदस्य हैं, उनको भी
उनकी ज्यादा
खाना पीना मिल रहा है अच्छी तरह से, तो उनका ऐसा ही पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय जो होते हैं, या पुण्य जिसको हम कहेंगे, उसके असंख्यात भेद होते हैं। ख्याल में है? तो कोई पैसा कमाता है और अपने खाते में रखता है, बीवी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है। अभी जो बालक एकदम छोटा है, 2 महीने का है, उसको दूध पिलाएंगे तो उसके पुण्य का उदय के कारण से उसको मिल रहा है क्या, पाप के कारण से? उसका वैसा है। अभी मान लो कि वो बच्चा 20-22 साल का हो गया और उसका बाप मर गया, तो सारा पैसा उसके खाते में आएगा कि नहीं? तो उसका पुण्य उस प्रकार का। अभी हमारा ऐसा मानना है या कहना है कि कमाता एक है लेकिन बाकी लोग एंजॉय करते हैं, तो उनका पुण्य वैसा ही थोड़ा सा हल्का था समझो।
अरे मैं तो कहूँ बढ़िया है। वो तो कमाने वाला तो धूप में वहाँ थोड़ा धूप कर रहा है और ये घर बैठे खा रहे हैं।
देखो हम आपसे पूछते हैं, किसी के घर में एक लड़का है, 3-4 भाई है, एक लड़के को पोलियो हो गया बचपन से, पोलियो तो बचपन में ही होता है, और वो बड़ा बड़ा होता है तो सब लोग उसको चिढ़ाते हैं, कुछ भी, ए लंगड़ा, ए ऐसा वैसा, जो भी बोलने का है, तो उसको दुख होता है कि घर के सारे सदस्य उनको होता है, ख्याल में है ना। अब उसकी शादी नहीं हो रही है तो फिर तकलीफ कितने जनों की होगी, माँ बाप भी, अरे इसकी कभी शादी होगी, किसी भी शादी। अब जानते हैं कि उसमें ऐब है लेकिन बेटा अपना है ना, तो क्या होता है कि सबको दुख होता है, तो दुख के जैसे जैसे जिसके जिसके जितने वैसे अशुभ परिणाम किए होंगे उसके अनुसार उसका उसको फल मिलता है। वैसे शुभ परिणाम भी सबके, इसलिए तो ऐसे लोग एक साथ एक फैमिली में आते हैं। अभी देखो हमने ऐसा देखा है, एक घर बहुत पैसे वाला घर है, यानी अभी पूछो मत इतना पैसा है, और किसी व्यक्ति को कैंसर हो जावे तो वो दुख किसको होगा? सिर्फ कैंसर हो रहा है उसको, क्या घर के सदस्य उनको? तो वैसे ही इकट्ठे आते हैं चले जाते हैं। चलो
यहाँ लिखा था ना, आ शेठियों ने पैसा धूल मळे ये बधा शुभना फल छे, अने अशुभना फल को मनुष्य तिर्यंच ने नरक में जवू छे, तो स्थूल बात बताई बहुत। अभी उसमें कितने असंख्यात प्रकार के भेद हो गए, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम भी उसमें भी कितने ग्रेड्स होते हैं, उसके फल में भी होंगे असंख्यात लोग। ऐसी ते बे उपयोग ने छोड़ी दई ने, क्योंकि है तो बंद और बंद का तो फल मिलेगा मिलेगा, तो बंद का तो जो शुभ संयोग जो अच्छे संयोग जिसको ये मान रहा है अच्छा अच्छा इष्ट जिसको लगते हैं उसको वो चाहिए वाले, इसलिए उसको पुण्य बंध अच्छा लगता है, इसलिए पाप से पुण्य अच्छा पाप से पुण्य अच्छा करता है और नाम उसको धर्म का देता है। उन दोनों कैसे संसार से मुक्त करने वाले भाव नहीं है, उस वो तो रखना ही है, क्योंकि देव में से देव में नहीं जा रहे, इतना पुण्य कमा के देव में गया, मान लेते पहले स्वर्ग में गया तो पहले स्वर्ग में तो ऐसा कोई हिंसा झूठ चोरी इसे मारकाट तो नहीं है, तो वहां से दूसरे तीसरे तो स्वर्ग में जाता न, तो नियम से मनुष्य 3 इंच में आना पड़ता है, क्यों वह तो पुण्य का उदय है, परंतु वहां के जो परिग्रह के संबंधी इच्छाएं संबंधी चल रहा है ये ईर्षा भाव जो कुछ उनके योग्य जहां अशुभ भाव भी हो रहे ना, फिर नीचे आएगा। देखो क्या कहते हैं, ये बे उपयोग ने छोड़ी दई ने शुद्ध चैतन्य आत्मानो के जेनु होवापनु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप छे। वो स्वभाव कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, तेनो अनुभव करवो। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप वीतराग मूर्ति प्रभु, देखो जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भी है वीतराग स्वरूप भी है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप वीतराग मूर्ति प्रभु आत्मानी एने स्वभाव सन्मुख थई ने प्रथम दृष्टि ने अनुभव करो। सबसे पहले करने लायक बात यह है, और यहां से धर्म की शुरुआत होगी, ये समय दर्शन लेना, दृष्टि ने समय दर्शन, उसी को प्रतीति कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, रुचि भी कहते हैं। पची शुभोपयोग ने पण छोड़ी ने, ये अविचारित्र की बात करेंगे, अशुभोपयोग तो अत्यंत हेय छेज, पण पची शुभनु पण लक्ष्य छोड़ी ने, उसका भी पर्याय में है शुभ फिर भी उसका लक्ष्य छोड़कर शुद्ध स्वरूप मां शुद्ध चैतन्य घनमा ठरू। आखिरी बात तो बहु बापू, मिथ्या दृष्टि जो शुभ परिणाम करता है तो उसके मैंने कुछ अच्छा किया ऐसा लगता है, उसको उसने आदरणीय माना, मान्यता में फिर है, समय दृष्टि को भी शुभ भाव आते हैं, परंतु वो जानता है कि ये तो बंध का कारण है, हो रहे है और ये मेरे अपराध से हो रहे, और मैं कब इसको छोड़कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। दोनों के मान्यता में अंतर है ना? देखो हाँ, नीचे का पैराग्राफ, ते परमानंद मूर्ति प्रभु, परम आनंद उत्कृष्ट ऐसे आनंद स्वरूप है, आनंद की मूर्ति ही है, ऐसे प्रभु आत्मा ने प्रतीतमा तो लीधो छे, प्रतीति दीर्घ चाहिए, प्रतीत प्रतीति हो तो दूसरा तीरस्व होता है, प्रतीत मां तो लीधो छे एने समय दर्शन तो हुआ है, अने पर्यायना ज्ञान मां तेने गेय पण बनायो छे, एने आत्मा का अनुभव भी हुआ है, परंतु पछी शुभने छोड़ीने अंतरमां शुद्धोपयोग करवो के जेमां रागनो कण नथी एवा शुद्धोपयोग ने छे अंदर, यानी शुद्धोपयोग ने स्वभाव में तो राग का कण भी नहीं है, पर्याय में था तो राग का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में एकाग्र हुआ है। के कुनकुंदाचार्य देव समस्त शुभ अशुभ उपयोग वृत्ति ने, वृत्ति एटले परिणति, तेने छोड़ी दई ने अर्थात अपास्त करीने, अपास्त ने उसका तिरस्कार करके, अपास्त करीने एटले के शुभाशुभनो तिरस्कार करीने, आहा शुभाशुभोपयोग शुभ अशुभ उपयोग के जे आत्मानो तिरस्कार करना छे। अभी तक क्या कहा था, किया था इस जीव ने, शुभ और अशुभ में रचा पचा रहा, यानी उसने अपने शुद्धात्मा का तिरस्कार किया था, अब शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से वो राग का तिरस्कार हो गया। तो कहते जे आत्मानो तिरस्कार करना छे तेनो तिरस्कार करीने, शुभ और अशुभ उपयोग कैसे है, आत्मा का तिरस्कार करने वाले, अब इसको क्या करना है, वो शुभ और अशुभ जो है उसका तिरस्कार करना है। આવી વાતો છે, માણસને ઝીણી પડે એવી છે. એ તો બહારમાં આખો દી પ્રવૃત્તિને પ્રવૃત્તિમાં પડ્યો છે અને તેમાંથી નવરો થાય તો આ દયા વ્રત સામાયિક પ્રતિક્રમને પોષિત કરે. બહાર કી પ્રવૃત્તિની દુનિયાદારી, અબ ઉસમે સે ટાઈમ નિકાલ કર, યે જો દયા દાનાદી જો કુછ હોતે હૈ પ્રવૃત્તિ, ઉસકો ધર્મ માન કર કર રહા હૈ, ઓર બસ ઇતને મેં સંતુષ્ટ હોકર બેઠ ગયા. અને આગે કુછ સમય દર્શન વાલી બાત વો રહે જાતી હૈ. તો કહેતે તેમાંથી નવરો થાય તો આ દયા વ્રત સામાયિક પ્રતિક્રમણને પોષિત કરે છે. પણ એ ક્યાં સાચા હતા? એને જો સંપ્રદાય મેં ચલ રહે એક રૂઢી તરીકે સે, વો સહી બાત ક્યા હૈ વહાં ઉસકા નિર્ણય ભી નહીં હૈ, તત્વજ્ઞાન હી નહીં કુછ. એ તો રાગ છે. એ જો સામાયિક પાઠ લેકર બેઠતે વો તો રાગ હૈ, વિકલ્પ કરે. સામાયિક તો એને કહીએ કે જેને શુભાશુભોપયોગ રહિત સ્વરૂપમાંથી વિતરાગતાનો લાભ મળે. સમ સમતા વિતરાગતા ઓર ઉસકા આય, આય ને ઇન્કમ હોતા ને આપકો, આયકર ભરતે કે નહીં, ઇન્કમ ટેક્સ, આય, આય કા અર્થ ક્યા, લાભ પ્રાપ્તિ, સમતા કી પ્રાપ્તિ. સમતા કી પ્રાપ્તિ તો હોવે નહીં, ઓર હમને સામાયિક કહા, ક્યા કહેંગે? ઇસલિયે કહેતે યે સચ્ચી સામાયિક નહીં. ફિર સે સુનો, દેખો, સામાયિક તો એને કહીએ કે જેને શુભ અશુભ ઉપયોગ રહિત સ્વરૂપમાંથી વિતરાગતાનો લાભ મળે. તો વિતરાગતા કા લાભ તો સ્વરૂપ મેં સે મિલેગા, જો સ્વયં વિતરાગ સ્વરૂપ હૈ. અબ સ્વરૂપ કી પહેચાન નહીં હૈ, ઉસકા કોઈ માલૂમ નહીં, કુછ નહીં, ઓર કુછ પાઠ બોલા, એક જગહ શાંતિ સે બેઠ ગયા ઓર માન લિયા મેને સામાયિક કર દી. પણ એ વિતરાગતા દૃષ્ટિમાં લીધી હોય તો પછી લાભ મળે ને. સામાયિક એટલે સમતાનો લાભ. સામ આય છે ને, સમ સે સામ શબ્દ, સામયિક સામાયિક હો ગયા ને, સમ શબ્દ સે સમ ઓર આય. પણ એ ક્યારે મળે? જૈસે શરીર સે શારીરિક શબ્દ તૈયાર હોતા હૈ, સામ સમ ઓર આય, ઇસે સામાયિક હો જાતા હૈ. ક્યારે મળે? કે જે વિતરાગ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે છે, ઉસકો બનાના નહીં વિતરાગ વાલા, યે સ્વભાવ તો વિતરાગ સ્વરૂપ હી હૈ. તો જે વિતરાગ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે તેની પ્રથમ દૃષ્ટિ થઈ હોય તો તેમાં લીન થતા, એ કુછ ઉસકો વિતરાગ બનાવવાની કુછ નહીં હૈ, જો હૈ ઉસકી દૃષ્ટિ કરના હૈ, કુછ ઉસકો તૈયાર કરના હોગા તો તો બહુત મુશ્કિલ કી બાત થી. અબ યે હૈ, રેડીમેડ હૈ, ક્યા કહે રહે, મેડ કહેના ભી અચ્છા નહીં હૈ, ક્યોંકિ હૈ હી હૈ, હે ના. જે વિતરાગ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે કબ સે, અનાદિ સે, તેની પ્રથમ દૃષ્ટિ થઈ હોય તો તેમાં લીન થતા, અને સમય દર્શન જ્ઞાન પૂર્વક ઉસમે ઓર અધિક સ્થિરતા વાલી બાત હૈ, વિતરાગપણાના પરિણામનો લાભ થાય, તેને સામાયિક કહેવામાં આવે છે. તો વિતરાગી પરિણમન હોગા તબ ઉસકો હમ કહેંગે સમતા કી પ્રાપ્તિ હુઈ, સામાયિક હુઆ. પણ અજ્ઞાનીને તો તેની ખબર ન મળે, અને બે ઘડી નમો અરિયંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ કરીને થઈ ગઈ સામાયિક એમ માને છે. કોઈ પાઠ બોલા, કોઈ નમોકાર મંત્ર બોલાય, કોઈ માલા કર દી, સમજાણું કાંઈ. અહીં કહે છે કે તે શુભ અશુભ ઉપયોગ વૃત્તિને અપાસ્ત કરીને, અપાસ્ત કરવું એટલે કે તિરસ્કારવું, તરછોડવું, હેય ગણવું, દૂર કરવું ને છોડી દેવું, એટલા તેના અર્થ છે. શુદ્ધોપયોગ વૃત્તિને આત્મસાત એટલે આત્મારૂપ પોતારૂપ કરતા થકા. આત્મસાત કરને એમ કહે છે ને અંગીકાર કરને, પુણ્ય પાપના ભાવ રહિત શુદ્ધ પરિણતિને આત્મસાત કરતા થકા, અર્થાત આત્મા સાથે એકાગ્ર કરતા થકા, હા હા આવો માર્ગ છે, તેને સામાયિક કહીએ ને પોષિત કહીએ. પણ અજ્ઞાનીને તો આ ભાન ન મળે કે આત્મા કોણ ને રાગ કોણ ને શું દેહ ને અમને પોષત છે માને છે. પોષત તો વસ્તુ જે અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે તેનું જેને જ્ઞાન થયું હોય ને જેની પ્રતીતમાં તે વસ્તુ આવી હોય તે પછી તે વસ્તુમાં પોષણ કરવું, સ્થિરતા કરીને શાંતિનું પોષણ કરવું, તેનું નામ પોષક છે. અધિક આત્મસ્થિરતા કોઈ હા પોષક કહે. અહીં એ કહે છે કે શુભાશુભ ઉપયોગ છોડી શુદ્ધોપયોગ વૃત્તિને આત્મસાત આત્મારૂપ પોતારૂપ કરતા થકા, શુભ અશુભ ભાવને પોતારૂપ કરતો હતો. પહેલે ક્યાં હે જ્ઞાન ઓર યે રાગ એકમેક માનતા, અપને રૂપ કરતા હે ને વો મેરે હૈ એસે લગતા થા ઉસકો. ત્યાં સુધી તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતી ક્યુંકિ ઉસકો રાગ અપને મેં અપ મેરે હૈ મેં કર રહા હું એને ઉસસે જો ભિન્નતા વો ખ્યાલ મેં નહીં આ રહી થી તબ તક વો મિથ્યા દ્રષ્ટિ થા. અને સમ્ય દર્શન થયા પછી પણ શુભ પરિણામ મારા નથી એમ માનવા છતાં પણ તે થતા હતા. ક્યાં કહા જબ ઉસને સહી નિર્ણય ક્યા તભી તો સમ્ય દર્શન હુઆ. અભી સમ્ય દર્શન હોને પર રાગ રહિત હો ગયા ક્યા પૂરા? તો કહેતા અભી તો તીન ચોકડી બાકી હૈ, ક્રોધમાન માયલો અન્ય ભી જો નવ કષાય જો હૈ ઉસમે સે યથાયોગ્ય ચલ રહે ઉસકે, ફિર ભી અભી વો મેરે હૈ એસા ઉસકા નહીં હૈ, ઉસસે ભિન્ન અપને જ્ઞાયક સ્વરૂપ કા અનુભવ ક્યા હૈ ઉસને. તો કહેતે કે એસે માનને પર ભી વો મેરે નહીં હૈ ઇસકી બિલકુલ ઉસકી પ્રતીતિ જ્ઞાન હૈ ફિર ભી તે થતા હતા, એને ફિર ભી વો રાગ આતે હૈ, જિસકો કહેતે ભૂમિકા અનુસાર રાગ આયેગે હી આયેગે. ક્યુંકિ અભી તો અનંતાનુબંધી મિથ્યા તો ચલા ગયા ચૌથે વાલે કે, અભી તો અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન સંજ્વલન તીન હૈ ઓર નવ નવ કષાય ભી પડે હૈ. નવ નવ કષાય મેં ક્યા હૈ અને ક્યા ગયા હૈ? લક્ષ્મી હા, નવ નવ કષાય મેં સે ક્યા ગયા ઓર ક્યા હૈ? ચૌથી ગુણસ્થાન વાલે કે બંધ ગયા હૈ, ઉદય ચલ રહા હૈ, ક્યા હૈ ઉસકે એસા પૂછે ને, ઉસકે પરિણામ મેં ક્યા હૈ ઉસકા અર્થ ક્યા, ઉસકે ઉદય ક્યા હૈ? નહીં સમજે? ફિર સે મેને પૂછા થા ચૌથે ગુણસ્થાન વાલે કે અભી નવ નવ કષાય મેં સે ક્યા હૈ? અભી સ્ત્રી વેદ વાલે ભી હૈ ને વહાં પર નપુસક વેદ વાલે, અરે તો નવે ગુણસ્થાન તક રહેંગે. બંધ કોણ સા હોતે? બંધ પુરુષ વેદ કા હો રહા હૈ કેવલ. સ્ત્રી નપુસક વેદ કા બંધ પહેલે મેં થા, મિથ્યા તો નપુસક વેદ અનંતાનુબંધી ઓર સ્ત્રી વેદ દૂસરે મેં થા, વો અભી નહીં હો રહે. બંધ કી બાત નહીં પૂછ રહે. હા અલગ અલગ જોન કી, જિસકો કોઈ એક વેદ કા ઉદય હૈ ઓર હાસ્યરતી અરતી શોક કા પલટતા રહેતા હૈ, ભયજુગુપ્સા ભી પલટતા રહેતા હૈ ઉદય. વેદ જીસ અભી ઉસ ભવ મેં તો વહી વેદ કાયમ રહેગા, નારકી હૈ તો નપુસક હી રહેગા, કિસી સ્ત્રી કો સમય દર્શન હુઆ તો સ્ત્રી વેદ તો રહેગા હી રહેગા. હા અગર નયા જન્મ લેતા હૈ તો પુરુષ વેદ મેં જન્મેગા, ખ્યાલ મેં? તો અભી હાસ્યરતી શોક રતી વો સબ હૈ અભી ઉસકે હૈ અને ઉસકે ઉદય હૈ, તભી તો પર્યાય મેં વો રાગ ભી હો રહે હૈ ઉસકે વજહસે. પરંતુ એ મેરે હૈ એસી માન્યતા છૂટ ગઈ હૈ એ કહેના ચાહતે, ક્યુંકિ તીન કષાય ચોકડી ભી બાકી હૈ. કોણ સે? અનંતાનુબંધી આદિ ક્રોધ માન માયા લોભ, અનંતાનુબંધી ગયા અપ્રત્યાખ્યાન, તો વૈસે પરિણામ હોગે કે નહીં હોગે ઉસકે, એ કહેના ચાહતે યહાં પર. ફિર સે દેખો, એ શુભ પરિણામ મારા નથી એમ માનવા છતાં પણ તે થતા હતા, તેને આત્મસાત નહોતા કરતા. અભી યહાં શુભ લિયા ઇસલિયે કે વો સમય દ્રષ્ટિ કો બરતા હુઆ શુભ ઉપયોગી કહેંગે. વો બાત આઈ થી ઉન્હોને પહેલે બતાઈ થી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો તો અશુભ ઉપયોગ વાલા હી કહે દિયા ઓર બાદ મેં શુભ ઉપયોગ વાલા કહે દિયા સમય દર્શન હોને પર. હા ઉસકે અશુભ ઉપયોગ હો ગઈ યથાયોગ્ય, પરંતુ ઇસી મેં લે લેના ઉસકો. તો કહેતે શુભાશુભ ને શુભાશુભ દોનો લીએ ના, ભિન્ન રાખવા છતાં પણ એને જ્ઞાની કો ભી શુભ ઓર અશુભ દોનો હૈ, બરોબર નહીં? ચોથે વાલે કો પાંચ વાલે કો અશુભ નહીં? અરે અશુભ ઉપયોગ તો ચલે ને, જૈસે ધંધા કરવા કા ભાવ કોણ સા, વ્યવસાય કરવા કા, પરિગ્રહ ઇકઠ્ઠા કરવા કા, એ સબ હૈ ને. અભી હિંસા झूठ चोरी विषय भी कहाँ वो पूरा निवृत्त हुआ है, जिसको पूरा त्याग कहाँ हुआ है उसके, जो कोई अतिचार जो कुछ दोष हो तो लग ही रहे उसके, है ना। देखो क्या कहते, शुभाशुभ ने भिन्न राखवा छतापण ज्ञानी ने शुभाशुभ भाव थता, परंतु हवे तेने पण छोड़ी ने। अभी क्या करना चाहिए उसके, बारंबार वो तो शुद्धोपयोग में रहना है। अभी मुनि के लिए तो शुभ छोड़कर भी कायम स्वरूप में स्थित होना है। तेने पण छोड़ी ने शुद्धोपयोग ने आत्मसात करवो एम कहे छे, यानी यही तो तात्पर्य इस गाथा का कि शुभ और अशुभ हो रहे हैं उनका छोड़कर, उनको छोड़कर उसका लक्ष्य ऑलरेडी जो हुए हैं उसका क्या छोड़ेगा, पर राग रहित स्वभाव का लक्ष्य करना तो उसको छोड़ा ऐसा कहेंगे। मान्यता में तो पहले लिया ही लिया, अब मान्यता में लिया फिर भी पर्याय में हो रहे, और जो हो रहे उसका लक्ष्य छोड़कर आत्मा में स्थिरता करनी, ये यानी शुद्धोपयोग ही आत्मसात करना है। शुद्धोपयोग ने आत्मसात करता थका, यानी करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार शुरू करे छे। शुभनो तथा अशुभनो तिरस्कार करीने तेने छोड़वा लायक करावीने हवे शुद्धोपयोगनो अधिकार शुरू करे छे। तेमा प्रथम शुद्धोपयोगना फलने आत्माना प्रोत्साहन माटे प्रशंसे छे, उसका फल बता रहे पहले में पहले। शुद्धोपयोगनु फल अनंत सुख छे अने शुभाशुभनु फल दुख छे। भले स्वर्ग मले के अब्जोपति धूड़ना शेठिया थाय, पण ए बधा दुखी छे, तेने मारा मानीने जे रहे छे ते मिथ्या दृष्टि दुखी छे, अने तेने कदाच मारा मानीने न रहे समय दृष्टि जो है, पण जे अस्थिरता थाय छे तेनो जो प्रेम छे तो ते पण मिथ्या दृष्टि छे। एक बात, ते अस्थिरता रहे तो पण पोतानी ते नथी एम तो जाणनार रहे तो समय दृष्टि छे, परंतु अहीं तो ते अस्थिरता ने पण छोड़ावीने शुद्धोपयोगनो अधिकार के जेनु फल शुद्धोपयोगनु फल अनंत आनंद, अनंत आनंद छे ते कहे छे। ख्याल में आती ना, समय दृष्टि को भी यही उपदेश देंगे कि शुद्धोपयोग का फल क्या है, और वो बारंबार वही आत्मसात करने योग्य है। शुभ ने अशुभ परिणाम ये पोते दुख रूप छे, यानी जिस काल में हो रहे उस काल में वो दुखरूप भाव है, अने तेना फल तरीके जे गति मळे छे ते पण दुखरूप छे, अने वर्तमान में दुखरूप है और भविष्य के दुख का कारण है, क्योंकि इनके कारण बंध हो रहा है और बंध का स्वरूप तो जरूर मिलेगा। अने आ जे शुद्धोपयोग छे ते सुखरूप छे। चैतन्य स्वरूप शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा द्रव्य छे, अने तेना जे गुण छे ते पण पवित्र छे। तेनी पवित्रतानी प्रतीति करीने पवित्रतानो उपयोग शुद्ध करवो, उसका उपयोग करना वही शुद्ध उपयोग कहेंगे। तेना फळने आत्माना प्रोत्साहन माटे आत्मानो उत्साह वधवा माटे आ गाथा कहे छे। अब टीका के ऊपर का प्रवचन। अनादि संसार थी, आ संसार आप कहा था ना, वो आ शब्द लगाए हुआ है, कोई ऐसा मालूम है? देखो ऐसा था ना शास्त्र में, आकर्ण नयन, आकर्ण ने कर्ण तक के जिसके नयन है, एक स्त्री का सौंदर्य का वर्णन करते समय कहते आकर्ण नयन, ऐसा शब्द आता है। ऐसे आ संसार कहा, अनादि संसार दूसरा भी बता दे। तो हम उसके ऊपर व्यंग करते थे स्कूल में थे तब, आ नयन कर्ण कहते थे, नहीं समझे? बड़ी बड़ी आंखों के लिए क्या कहते, कान तक फैले हुए नयन, और बड़े बड़े कान किसके होते हैं, वो गधे जैसे, उसको क्या कहते हैं, आ नयन कर्ण। यानी वो किसी सौंदर्य का लक्षण नहीं है, उपहास है, उल्टा विनोद करते हैं ना ऐसा। यहाँ आ संसार शब्द बताए ना, अनादि संसार थी, नहीं आश्रम में वो नहीं लगता, उसमें भी वो श्रवण अश्रवण श्रवण आश्रवण आश्रवण यानी आना, आश्रवण यही शब्द है, वो आ प्रत्यय नहीं लगा उसको।
जो आगमन में आ प्रत्यय लगा है
ने वो भी वो गमन और आगमन, वो भी आ वाली बात नहीं है,
जैसे
ऐसा भी हो जाता ना अजानु बाहु, अजानु बाहु का अर्थ क्या होता है, जानु यानी घुटना, ये नी ज्वाइंट घुटने, बाहु वहां तक जो है, ये तो सौंदर्य का सौंदर्य का वर्णन है ना, जो राजाओं का वगैरह जो पुरुष के लिए वर्णन आते हैं, अजानु बाहु सुहास्य वदना, ये सारे संस्कृत में ऐसे अलग अलग श्लोक आते हैं, बहुत याद किए थे पहले। अनादि संसार थी जे आह्लाद पूर्वे कदी अनुभव नहीं, अनादि ना संसार मा नरक मा के मनुष्य मा के राजपद मा के देव मा क्या आत्मा नो आनंद अनुभव नहीं, ए बधी गतई मा तो दुख नो अनुभव कर्यो छे, केम के इंद्रिय ईरस्व इंद्रिय नो सुख छे पण दुख छे। यहाँ कहे जे के अनादि संसार थी अर्थात जेना संसार ना परिभ्रमण ने आदि नथी, क्यारेक संसार परिभ्रमण शुरू थयू छे एम नथी। लोगों को लगता है अनादि से यानी अदादि नाम का कोई पॉइंट है और वहां से, ऐसा नहीं है, अनादि कहने से नो बिगिनिंग, ये तो अनादि छे। आ भव पहला भव ते भव पहला भव ते भव पहला भव नित्य भव पहला भव, एम जेनी आदि नथी एवं अनादि संसार ना परिभ्रमण थी पूर्वे कदी आह्लाद अनुभवायो नथी, अर्थात आत्मानो जे आनंद छे ते क्यांय चार गति मा अनुभवायो नथी। अतींद्रिय आनंद ये अपूर्व होता है, अपूर्व कभी नहीं अनुभवा एवं अपूर्व, अपूर्व एटले पूर्वे नहीं थयेलू, परम अद्भुत आह्लाद रूप हुआ थी, परम अद्भुत आह्लाद स्वरूप हुआ थी आनंद अतिशय छे, उसका विशेषण बना है अतिशय, ए शुद्धोपयोग नु फल एवो अतींद्रिय आनंद अतिशय छे तेम कहे छे। हा हा शुभ अशुभ उपयोग नु फल चार गति छे, ज्ञानी ने पण जो शुभाशुभ भाव हो तो तेनाथी तेने बंधन थाय छे, पण वात ए छे के जेने आत्मधर्म छे द्रव्य स्वभाव जे पवित्र छे तेनो जेने अनुभव ने दृष्टि थया छे तेने तेमा अशुभ भाव आवे छे, छता पण तेने भविष्यनो आयुष्य तो शुभ भाव आवे त्यारे ज बंधाय छे। क्या कहा, सम्य दृष्टि को है ना, विसम्य दृष्टि जो मनुष्य तीरंच है, समय दर्शन होने पर आयु बंधना बंधनी है तो देव की ही बंधेगी, ऐसे परिणाम में उसका आयु का बंध होगा, क्योंकि समय दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, लेशा तो छह होगी परंतु उसको जो किसी भी इवन कृष्ण लेशा में भी आयु का बंध होगा तो देवायु को ही बंध। ये अपनी बात आई थी महाबंध वगैरह में, उसके आधार से मैं कह रही हूँ, कृष्ण लेशा वाले को भी देवायु बन सकती है, नहीं ऐसी बात नहीं, उसके जो यथायुग्य मध्यम परिणाम, परंतु लेशा बात अलग है और यहाँ शुभ शुभ बात अलग है। हाँ देखो नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है, सम्यक तो छूट गया और मिथ्या तो आया, तो मिथ्या दृष्टि कौन सी आयु बांध सकता है, सभी सभी जीव समाज खुले उसको बांधने के लिए, उसके यथायोग्य परिणाम जैसे हो गए वैसे उसकी आयु बंधाएंगे, चारों गति हो गया था अभी छूट गया है, अभी वर्तमान में जो परिणाम है उसके अनुसार आयु बंधेगी ना, गति तो पहले भी पड़ी है सत्ता में, आयु की बात चल रही है, तो मिथ्या दृष्टि हुआ तो चारों गतियां भी चारों बंध रही है, जातियां भी अल्टरनेटली पांचों जातियां बन रही, मिथ्या तो में आया है अभी वो, तो उसके कोई भी आयु बन सकती है। देव मिथ्या दृष्टि को देवायु नहीं बनती, ऐसी बात थोड़ी है, बन सकती है, मनुष्य भी बन सकती है, अभी निगोद में भी जा सकता है, केंद्रीय कहीं जा सकता है ना, ऐसी बात नहीं है। हम तो इतना ही देखें, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ मिथ्या तो में जाता है, तो वो भी इन सभी जीव समासों में जा सकता है। परिणाम के अनुसार उसका फल है, उसने क्या किया था उसके अनुसार उसका नया बंध नहीं हो रहा है, बंध तो उस समय के परिणाम से हो रहा है। ख्याल में आई बात? अभी हमारे बाप दादा के पास बहुत संपत्ति थी, आपके हाथ में कितने पैसे है, आप कितना खर्चा करोगे, क्या खाओगे, जो है हाथ में उतना ही खाओगे? कि हमारे शिवाजी राजा के पास बहुत सब होता है, ऐसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे यहाँ वैसा था, अभी क्या है आपके हाथ में? तो अभी जो परिणाम है वैसा बंध होगा अभी। हाँ, जिसने पहले आयु बांधी है उसकी आयु तो चेंज नहीं होगी।
नहीं नहीं, उनका ये कहना था कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक उसे छूट कर मिथ्यात्व में आवे तो उसको चारों ही, चारों में से कोई भी आयु बंधती है, बस इतना ख्याल रखना।
हमने देखा है जैसा परिणाम वैसा बंध, अभी उसके कैसे संकलेश हो रहा है कि क्या हो रहा है डिपेंड्स। अभी कोई मिथ्या तो में आया फिर भी इतना संकलेश परिणाम ही नहीं हुआ है, देवायु भी बांध सकता है, और उतने के वैसे परिणाम कायम नहीं रहते, वो चेंज होते रहते, कभी विशुद्धि कभी संकलेश होता रहता है। कहाँ पढ़ रहे थे हम ये लिखा है, भविष्य आयुष्य बंध तो शुभ भाव वक्ते पड़े, बात आई ना, कारण के शुभ भाव पण बंधनु कारण छे नी। यानी देखो, नारकी और देव सम्य दृष्टि है, अब उनके आयु का बंध होना है तो मनुष्य का बंध करेंगे, सम्यक तो अवस्था में। हाँ, वो सातवें नरक का नारकी सम्यक तो छूट जाएगा, मिथ्यात्व में आएगा, बाद में आयु का बंध करेगा, वो तो उसका नियम, क्योंकि उसका आयु का बंध मिथ्यात्व में होता है। तो सम्यक तो अवस्था में जो आयु का बंध करेगा वो मनुष्य का ही करेगा, जब सम्यक तो नहीं था मनुष्य आयु का भी बंध होता था, तिर्यंच आयु का भी बंध होता था। नारकी और देव के लिए ये बात बता रही हूँ। हाँ, पुण्य करके देव
में
नहीं, पुण्य बढ़ नहीं गया, देखो देखो जमा बीमा कुछ नहीं करता है। जब आयु बंधने का समय आया, देवगति अभी हम सौधर्म ईशान की बात करते हैं, भवनोत्री की करते हैं, तो तिर्यंच गति भी बांध सकते, मनुष्य गति भी बांध सकते। तिर्यंच में एकेंद्रीय जाति का भी बंध कर सकते, पंचेंद्रीय का भी कर सकते, यानी उसके संकलेश और विशुद्धि जब जैसे हो रहे हैं वैसे उनको बंध होगा।
हम आपसे पूछते हैं, कोई देवायु देव गति का जीव मनुष्यायु बांधकर मनुष्य में आया ना? अगर वो म्लेंच में चला गया तो हम तो यहाँ भारत की बात देखते हैं। ऐसा हो भारत में भी समझो ना, कोई अन्य जिसमें कहते हैं कि एकदम नीचे चांडाल आदि के पेट में आया तो क्या फायदा है, यानी जिसको कभी आत्मा का नाम भी सुनने को नहीं मिले, मनुष्य है उससे कुछ नहीं, यानी वो मनुष्य हो सकता है, लेकिन आपका जो कहने के अधिक पुण्य बांध के मनुष्य हुआ, वो मनुष्य पर्याय में आया और उसने अपने आत्मा का अनुभव करके श्रेणी वगैरह मान ली तो कहेंगे कि उसने पुण्य बहुत साथ में लेके आया,
वो भी श्रेणी मानने का पुण्य
के कारण श्रेणी नहीं चढ़ता है, ये भी ध्यान में रखना। लेकिन उसने उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वो अच्छी जगह पर लगाई, इसलिए हम कहेंगे कि उसके पुण्य का उदय कहेंगे, पर वो पुण्य से कुछ नहीं होता है, वो अपना स्वयं का उस समय का जो पुरुषार्थ होगा उसके अनुसार उसका परिणमन होगा।
देखो, जीव को मुख्यता क्या है, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, फर्क किसने पड़ना है, उसको तो संयोगों से भिन्नता जाननी है, शरीर से भी और संयोगों से भी मैं भिन्न हूँ, तो क्या पुण्य के उदय वाले को जल्दी समय दर्शन होगा, ऐसा कहना आपको? चारों गतियों में समय दर्शन हो सकता है कि नहीं? पाप के उदय में नरक में गया, वहां पर भी सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि उसने संयोगों से और राग से अपनी भिन्नता पहचानी। तीर्यंच भी, तीर्यंच पर्याय में भी सम्य दर्शन होता है। अभी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए देव में और मनुष्य में, तो पुण्य का उदय हो जावे या पुण्य करे और मनुष्य हो और फिर सम्य दर्शन हो जावे, ये बात कहाँ से आई? नहीं, पाप के भाव में देखो, देखो उसके तो उसमें जो सुनो सुनो, जब समय दर्शन हो रहा है तो विशुद्धि के काल में ही होगा, संकलेश के काल में नहीं होगा। पाप का उदय अलग बात है और पाप के परिणाम अलग बात है। बाहर उदय पाप का चल रहा है, पर उसके परिणाम क्या है? समय दर्शन होने वाला तत्व का चिंतन में होगा, उसका तत्व का चिंतन रुक के उसमें आत्मा का अनुभव हुआ, उसके पूर्व अवस्था में चिंतन तो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो शुभ रूप, उसको शुभ उपयोग कहेंगे हम, यानी उसके भले लेशा कृष्ण क्यों ना हो, पर उसके मंद उसका उदय, यानी उसके जो लेशा के परिणाम है अपने अपने लेशा में है। नारकी अपनी उसकी कृष्ण लेशा बदल कर कापोत नहीं होने वाले, नील नहीं होने वाली, नील वाला नील में रहेगा, कपोत वाला कपोत में रहे, अपनी लेशा में उसके परिणाम मंदता की ओर, लेशा का मंद उदय चलेगा वहां पर, जिसको हम विशुद्धि कहेंगे, उसकी अपेक्षा विशुद्धि, हाँ उसके पूर्व परिणाम से उसकी विशुद्धि बढ़ेगी।
पहले में पहले हमारी ये भूल हो रही है कि पाप से पुण्य अच्छा, ये कहीं ना कहीं अंदर बात बैठी हुई है। यहाँ तो बार बार बता रहे कि दोनों ही है, यह है शुभ भी है और वो तुम्हारा अशुभ तो टोटल तद्दन है, यह है एक बात। दूसरी बात, हम संयोगों की अपेक्षा सोचते हैं, एक बात बिल्कुल ख्याल में हमें रखनी है वो कि हमारे जो परिणाम होंगे उन परिणामों का फल हमें मिलेगा। तो अभी आपने जो कहा कि नरक का कोई जीव है वहाँ संयोग इतने बदतर है, लेकिन उस समय आपने जैसा बताया कि वो अपने स्वभाव में स्वरूप में एकाग्र होकर स्व का अनुभव करेगा तो उसके परिणाम अलग है, संयोग अलग है। इसलिए तो बताते हैं कि नारकियों को भी सम्यक तो हो सकता है। तो हम आप तो मनुष्य पर्याय में हैं, उनसे तो अपने को अनेक गुना अधिक जिसको कहते सुख सुविधा है संयोग की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अटके रहे हैं। इसके लिए हमें एक नक्की करना है कि जैसा हमारा परिणाम होगा परिणाम के अनुसार हमको उसका फल मिलना है।
देखो शुभ के आपके ना, शुभ के फल में उसको ये पुण्य के फल में ऐसा मिला वैसा मिला, तो अभी मुझे आप बताओ शुभ के फल है यह है कि उपादेय है, अशुभ के फल है यह का उपादेय है? हाँ क्या आप क्या कहते हैं? आप नहीं समझोगे, आप बताना शुभ और अशुभ दोनों के फल है यह है, क्या अकेला अशुभ का फल है यह है, क्या अकेला शुभ का फल है यह है? लक्ष्मी, अरे फल तो गेय है, वो तो संयोग है। हमने शुभ अशुभ उपयोग को है यह कहा, परिणाम को, शुभ अशुभ परिणाम को है यह कहा, उसके फल को, अरे उसका फल तो अभी संयोग में हो रहा है, वो फल तो जुदा है अपने से, भले इसीलिए शुभ का फल मिल रहा हो या अशुभ का फल मिल रहा, उस फल में यानी उसके उदय में भी, शुभ और अशुभ के उदय में भी जीव दोनों का लक्ष्य छोड़कर, ये तो संयोग है ना, ये संयोगों का लक्ष्य करके नए राग द्वेष करता है। संयोगों का लक्ष्य छूटेगा तो राग का भी लक्ष्य छूटेगा, तो अपना स्वभाव का उपयोग करेगा। राग को है ये कहा है, राग के फल को तो उद्गेय में चले जाएंगे, वो तो परवस्तु है। ख्याल में आई बात? जरा बराबर सोचना इस पर।
देखो
फल नहीं है, अरे फल को ही हमने उपादेय माना है, फल यानी अभी शुभ के उदय में पैसा मिल रहा है तो है ये उपादेय है, अरे मेरे से भिन्न तत्व है, वो ज्ञान का गेय है।
देखो अभी आपको एक हम प्रश्न पूछते हैं, हमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त बनेंगे। तो अभी हमारा ये प्रश्न है कि सच्चे देव जो है, सच्चे गुरु जो है, वो हेय है, गेय है, या
उपादेय
है।
ज्ञान के गेय है, बराबर है, पर वस्तु है ना, पर पदार्थ है।
लोग कहते हैं कि हमको मार्ग दिखाएंगे इसलिए वो हमको एक देश उपादेय होंगे या ऐसा।
और उनकी भक्ति,
हम तो ऐसा, हमने ऐसा प्रश्न पूछा था कि ये देव गुरु शास्त्र है वो साधक है क्या बाधक है,
उनकी भक्ति कैसे है, ये है राग है ना, ये ऐसे, ये देखो सात तत्वों में पूरा सब छुपा हुआ है। जब तक उसका निर्णय नहीं होता है तो खाली ये कितने भी शास्त्र पढ़े तो ये बेसिक है ना अपना। चलो हो गया, हो गया ना, अभी लास्ट पैराग्राफ लेना है। ये भविष्य न आयुष्य न बनतो शुभ भाव वक्त पड़े, कारण के शुभ भाव पण बंधनो कारण छे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। लास्ट पैराग्राफ से कल शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान तै